एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में, या ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत संक्षिप्त परिचय।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम अनीता श्रू के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास द पायलट्स वाइफ की गहराइयों में उतरेंगे।
जी हाँ, द पायलट्स वाइफ ये 1998 में आई थी और आते ही मतलब काफी हिट हो गई थी। ओपराज बुक क्लब में भी शामिल हुई।
हाँ, बेस्ट सेलर रही। और अनीता श्रू वो जानी जाती हैं अपने मनोवैज्ञानिक चित्रण के लिए, मानवीय रिश्तों की जो परतें हैं उनको उकेरने के लिए।
बिल्कुल, उनकी खासियत है कि वो साधारण सी लगने वाली घरेलू स्थितियों से इंसान के मन के अंधेरे कोनों तक पहुंच जाती हैं, खासकर संकट के समय में।
और इस उपन्यास में वो विश्वास, पहचान और वो एक भयानक एहसास कि हम शायद अपने सबसे करीबी लोगों को भी पूरी तरह नहीं जानते, इसकी पड़ताल करती हैं। सही कहा, ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक शादी के मलबे से सच को खोजने की कहानी है।
शुरुआत ही वो बहुत असरदार है,
है ना?
हाँ, दिल दहला देने वाली कहानी हमें सीधे उस पल में ले जाती है जिसका डर शायद हर पायलट की पत्नी को रहता होगा।
न्यू इंग्लैंड का तट, एक पुराना घर, सुबह के 3:24 और दरवाजे पर एक दस्तक।
ये कैथरीन लियोन्स का घर है, पायलट जैक लियोन्स की पत्नी, और दरवाजे पर कौन है?
एयरलाइन यूनियन का प्रतिनिधि रॉबर्ट हार्ट।
और वो खबर लाता है, वो खबर जो कैथरीन की दुनिया को बिखेर देती है
कि जैक का विमान आयरलैंड के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कोई नहीं बचा, 104 लोग।
सोचिए जरा, वो एक दस्तक और सब खत्म, जैसे पूरी जिंदगी का वो ताना बाना ही उड़ गया हो।
बिल्कुल, कैथरीन का वो पहला शौक, दुख, और फिर उसे अपनी 15 साल की बेटी मैटी, उसको भी तो बताना है।
हाँ, ये सब घटता है न्यू हैम्पशायर के फॉर्चून रॉक्स में, एक तटीय शहर जिसकी वो पथरीली कठोर सुंदरता है, वो जैसे कैथरीन के अंदर के तूफान का आईना बन जाती है।
पर कहानी, जैसा आपने कहा, सिर्फ दुख पर नहीं रुकती, ये तो बस मतलब शुरुआत है।
असल तूफान तो अभी बाकी है।
सही, कहानी विधवापन के दुख से शुरू होकर एक ऐसे रहस्य की तरफ मुड़ जाती है जो शायद दुख से भी ज्यादा तकलीफ दे है।
और वो सवाल खड़ा करती है कि आप उस इंसान को सच में जान सकते हैं जिसके साथ आपने 16 साल गुजारे हों?
जैसे जैसे कैथरीन इस सदमे से उभरने की कोशिश करती है, उसे जैक के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चलने लगती हैं जो
उसकी पूरी शादी पर ही सवालिया निशान लगा देती हैं।
बिल्कुल, यहीं से उपन्यास का जो केंद्रीय संघर्ष है वो उभरता है।
एक तरफ तो विमान दुर्घटना की जांच चल रही है, उसमें अजीब सुराग मिल रहे हैं, जैसे फ्लाइट रिकॉर्डर में आखिरी पलों की खामोशी, फिर एक लैच की आवाज।
हाँ, शकी गहरा था कि कहीं जैक ने जानबूझकर तो विमान नहीं गिराया, ये आत्महत्या थी या कुछ और था, ये बाहरी दुनिया का शक है।
और दूसरी तरफ कैथरीन के घर के अंदर उसकी अपनी निजी जांच शुरू होती है।
उसे जैक के सामान से कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, लंदन के होटल की रसीदें, एक अनजान पोस्ट ऑफिस बॉक्स की चाबी, क्रेडिट कार्ड के ऐसे बिल जिनका कोई हिसाब नहीं।
हाँ, एक महंगी दूरबीन की रसीद जो उसे कभी मिली ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे जैक का कोई और चेहरा था, एक और जिंदगी
जिसके बारे में कैथरीन को भनक तक नहीं थी।
उसका दुख अब सिर्फ पति को खोने का नहीं रह जाता, अभी अपने पूरे अतीत पर से विश्वास उठ जाने का दुख है।
और ये सवाल बड़ा हो जाता है, आखिर जैक लियोन्स था कौन?
यहीं पर अनीता श्रू पाठक को कैथरीन की यात्रा में शामिल कर लेती हैं। कैथरीन शुरू में कैसी है? एक पत्नी, एक माँ, संतुष्ट, बुद्धिमान, शायद थोड़ी अलग थलग रहने वाली।
हाँ, जिसने शायद पति की लंबी गैर मौजूदगियों को स्वीकार कर लिया था, शायद कुछ बातों को जानबूझकर नजरअंदाज भी किया था।
हो सकता है, एक तरह की जानबूझकर भोली बनी रहना।
हाँ शायद, लेकिन ये त्रासदी उसे बदल देती है, वो सिर्फ दुख में डूबी रहने वाली औरत नहीं रहती,
वो एक्टिव हो जाती है, सच्चाई की तलाश में निकल पड़ती है।
वो मानने को तैयार नहीं कि उसका पति कोई राक्षस था, वो जवाब चाहती है, चाहे वो कितने भी कड़वे क्यों ना हो।
ये एक बड़ा बदलाव है, पैसिव दुख से एक्टिव खोज की तरफ, और शायद इसी में उसे अपने नई ताकत मिलती है।
और इस पूरी यात्रा में उसे अपनी बेटी मैटी को भी संभालना है जो खुद टीनेज में है।
हाँ, मैटी के लिए तो ये दोहरा सदमा है, पिता की मौत और फिर पिता की जो आदर्श छवि थी उसका टूटना।
माँ बेटी का रिश्ता भी इस दौरान काफी तनाव से गुजरता है, लेकिन गहरा भी होता है।
और जैक, वो तो कहानी की शुरुआत में ही मर चुका है,
लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह है, यादों में, सवालों में, और धीरे धीरे जो राज खुल रहे हैं उनमें।
कैथरीन की यादों वाला जैक तो काफी आकर्षक है, समर्पित है, भले ही दूर रहता हो।
लेकिन जो जैक अब सामने आ रहा है वो धोखेबाज है, जिसने लंदन में म्यूअर बोलांड नाम की एक महिला के साथ न सिर्फ सालों रिश्ता रखा
बल्कि उसका एक बच्चा भी है।
हाँ, एक पूरी दूसरी जिंदगी चल रही थी।
पर श्रू यहाँ जैक को आसानी से विलन नहीं बनने देती, उसकी प्रेरणाएं वो जटिल है।
क्या ये उसके अतीत की किसी घटना का नतीजा था या बस एक अलग जिंदगी की चाहत? उपन्यास उसे किसी खांचे में नहीं डालता।
हाँ, न हीरो न विलन, बस एक गहरा दोषपूर्ण इंसान जिसके कर्मों के नतीजे भयानक हैं।
और दूसरे किरदार भी कहानी को परतें देते हैं, जैसे म्यूअर बोलांड, जैक की आयरिश प्रेमिका।
वो सिर्फ दूसरी औरत नहीं है, जब कैथरीन उससे मिलती है
तो वो एक आईने की तरह है। दोनों को एक ही आदमी ने धोखा दिया है। उनकी वो मुलाकात बहुत भावनात्मक है।
कहानी का एक अहम मोड़, और रॉबर्ट हार्ट
यूनियन का प्रतिनिधि,
वो शुरू में बुरी खबर और शक लेकर आता है, तथ्यों की कठोर दुनिया का प्रतीक। लेकिन धीरे धीरे वो कैथरीन के लिए जानकारी का एक स्रोत बनता है, एक सहारा भी। उसका रवैया प्रोफेशनल है पर उसमें सहानुभूति भी है।
हाँ, तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? कैथरीन सुरागों का पीछा करते हुए कहाँ पहुँचती है?
वो लंदन पहुँचती है। ये उसकी जांच का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल, सबसे विनाशकारी चरण है।
लंदन में ही उसका सामना होता है म्यूर बोलांड से,
और जैक के दोहरे जीवन का पूरा सच वो सामने आ जाता है।
सालों का रिश्ता, एक बच्चा, एक पूरी अलग दुनिया।
कैथरीन के लिए जानना कि उसकी शादी एक झूठ पर टिकी थी, ये शायद जैक की मौत से भी ज्यादा बड़ा सदमा है।
बिल्कुल, और यही वो सोचती है, वो 16 साल तक एक आदमी से कैसे शादी कर सकती थी और उसे बिल्कुल नहीं जानती थी।
ये लाइन ये उपन्यास के केंद्रीय विषय को पकड़ती है, दूसरों की अज्ञेयता, अननोएबिलिटी।
क्या हम सच में किसी को जान सकते हैं
पूरी तरह?
शुरू का उपन्यास इसी सवाल को बार बार कुरेदता है। ये दिखाता है कि रिश्तों में कितना कुछ प्रदर्शन होता है, कितना कुछ छिपाया जाता है।
कैथरीन का विवाह, जैसा वो सोचती है, समझौतों की एक श्रृंखला है, और कभी कभी समझौता ये स्वीकार करना होता है कि आप अपने जीवन साथी के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं।
पर यहाँ तो अज्ञानता का स्तर ही कुछ और था।
बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ जैक के अफेयर तक ही नहीं है।
कहानी का चौथा और आखिरी चरण वो दुर्घटना की उस सच्चाई को सामने लाता है जो अफेयर से भी ज्यादा भयानक है।
म्यूर बोलांड का परिवार, उसके कुछ तार आईआरए यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े हैं,
और म्यूर कैथरीन को बताती है कि जैक आतंकवादी तो नहीं था पर वो फंस गया था।
उसने म्यूर के भाई के लिए एक पैकेज ले जाने पर हाँ कह दी थी, ये सोचकर कि उसमें पैसे हैं।
लेकिन असल में वो प्लास्टिक विस्फोटक था। प्लान ये था कि उसे बाद में किसी खाली विमान में प्लांट किया जाएगा।
मगर कुछ गड़बड़ हो गई।
हाँ, बम बनाने वाला आदमी वो उसी उड़ान में था जिसे जैक उड़ा रहा था, और उसे बीच हवा में ही बम एक्टिवेट करना पड़ा।
अब जैक के सामने एक भयानक चुनाव था।
जब जैक को पता चला कि विमान में बम है और वो फटने वाला है, तो उसने क्या किया?
उसने विमान को आबादी वाले इलाके पर गिरने से बचाने के लिए जानबूझकर अटलांटिक महासागर की ओर मोड़ दिया और उसे पानी में क्रैश कर दिया।
ये एक तरह से उसके किए की भयावहता को कम करने का एक हताश प्रयास था, जिसमें उसकी और 103 और लोगों की जान चली गई।
ये खुलासा जैक के किरदार को और भी पेचीदा बना देता है।
हाँ, उसका आखिरी काम क्या वो वीरता थी या अपनी ही आपराधिक कमजोरी का नतीजा जिसने इतने लोगों को खतरे में डाला?
उपन्यास यहाँ कोई आसान जवाब नहीं देता, ये नैतिक अस्पष्टता बनाए रखता है जो इसकी खूबी भी है।
और यही हमें उपन्यास के मुख्य विषयों पर लाता है। सबसे बड़ा तो यही है, दूसरों को न जान पाने की हमारी सीमा।
फिर विवाह और विश्वास कितने नाजुक होते हैं, कैसे रिश्ते आधे सच और अनदेखी पर टिके रह सकते हैं, और जब वो टूटते हैं तो क्या होता है।
साथ ही स्त्री पहचान का सवाल, कैथरीन की यात्रा सिर्फ सच जानने की नहीं है,
वो पत्नी और माँ की भूमिकाओं से परे अपनी पहचान भी खोज रही है। ये एक दर्दनाक लेकिन मुक्तिदायक आत्म जागरूकता है।
और दुख का जटिल रूप, यहाँ सिर्फ मौत का दुख नहीं है, यहाँ विश्वासघात का दुख है जो ज्यादा गहरा, ज्यादा कड़वा होता है।
कैथरीन को एहसास होता है कि वो जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा समय से विधवा थी, शायद सालों से।
उफ, और रहस्यों की विनाशकारी शक्ति, वो भी एक अहम विषय है।
हाँ, जैक का दोहरा जीवन दिखाता है कि कैसे एक झूठ को बचाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं, और अंत में ये सब कुछ तबाह कर देता है।
जैसे उपन्यास में कहा गया है, एक झूठ का अपना जीवन होता है, उसे खिलाने की जरूरत होती है, उसे बचाने की जरूरत होती है, और वो भूखा होता है।
और वो भूख सब कुछ निगल लेती है।
अनीता शुरू की लिखने की शैली भी वो कहानी को बहुत प्रभावी बनाती है।
हाँ, वो तीसरे पुरुष में लिखती हैं, लेकिन नजरिया पूरी तरह कैथरीन का है, थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू।
इससे हम कैथरीन के भ्रम, डर और खुलासों को बहुत नजदीक से महसूस करते हैं, इंटीमेट, कभी कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक भी।
भाषा संयमित है पर मनोवैज्ञानिक पकड़ बहुत मजबूत है, मेलोड्रामा से बचती हैं।
तनाव धीरे धीरे बढ़ता है छोटी छोटी डिटेल से। प्रतीकवाद का भी अच्छा इस्तेमाल है, घर मतलब सुरक्षा का भ्रम, समंदर मतलब रहस्य की गहराई,
और वो बर्फीला परिदृश्य जो भावनात्मक ठंडक को दिखाता है।
विडंबना भी है, पायलट जिस पर सबकी सुरक्षा का जिम्मा है वही भरोसे के लायक नहीं।
और पूर्वाभास भी है, कैथरीन के मन में पहले जो हल्की शंकाएं थीं वो बाद में भयानक सच बन जाती हैं।
संरचना भी दिलचस्प है, वर्तमान की जांच और अतीत की सुखद यादों का टकराव। जैसे जैसे सच सामने आता है, अतीत की वो सुनहरी यादें वो कांच की तरह टूटती जाती हैं।
भावनात्मक स्तर पर यह उपन्यास मतलब पाठक को झकझोर देता है।
हाँ, कैथरीन का दर्द अपना सा लगने लगता है, यह हमारे अंदर के डर को छूता है। क्या हमारे अपने जीवन की नींव भी इतनी खोखली हो सकती है?
ये सोचने पर मजबूर करता है, विश्वास क्या है, अंतरंगता क्या है, हम सच में किसी को कितना जानते हैं।
अंत में ये उपन्यास कोई आसान समाधान नहीं देता, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है।
ये जीवन की जटिलताओं और अस्पष्टताओं को स्वीकार करता है। कैथरीन एक बदली हुई इंसान है, ज्यादा मजबूत पर शायद ज्यादा अकेली भी।
उसे ये कड़वा सच स्वीकार करना पड़ता है कि वो एक अजनबी से शादी कर चुकी थी। ये उतना ही सरल और उतना ही जटिल था।
वाकई यह कहानी मानवीय रिश्तों की उन परतों को उधेड़ती है जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते,
और सच्चाई का सामना करने की उस दर्दनाक लेकिन शायद जरूरी यात्रा को दिखाती है जो हमें बदल कर रख देती है।
संगीत संक्षिप्त ठहराव, यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है। संगीत समाप्त।